तो शरीर जीर्ण होता है, आत्मा जीर्ण नहीं होता है। और निद्रा, निद्रा शरीर को आती है, बुद्धि को आती है, आत्मा को नहीं। ऐसा नहीं है कि काम करते करते आत्मा कभी थक जाएगा, सो जाएगा। आत्मा नित्य जगा रहता है, कभी नहीं सोता है। हम लोगों को जो शरीर मिला है इसमें निद्रा एक लगता है जैसे आवश्यक आइटम भगवान ने जोड़ दिया है, रोज खाओ सोओ, ये सब आत्मा में नहीं है। हमारे स्वरूप में यह चीज नहीं है, सोना और खाना, प्यास लगना, रोग होना, बुढ़ापा होना। आत्मा ऐसा नहीं कि आत्मा को जब सुलाया जाएगा तब जाकर के वो कुछ स्वस्थ होगा। हमारा शरीर तो ऐसा है, और मन भी, दोनों मन और शरीर, मतलब बुद्धि और शरीर, कि इनको अगर आराम न दीजिए तो इनकी दशा बिगड़ जाएगी। 8-10 दिन किसी को जगा दीजिए तो वो पागल हो जाएगा, उसके लिए आराम चाहिए। लेकिन आत्मा के लिए आराम की कोई आवश्यकता नहीं, वह नहीं सोता है, निद्रा उसके लिए आवश्यक। रति ही, रति का अर्थ है कि किसी विषय को भोग करके और सुख का अनुभव करना, इसको रति कहते हैं। कुछ मान लीजिए एक गिलास रस पिया तो कहता ओह मजा आ गया, ये मजा आत्मा को नहीं आया। आत्मा प्राकृत रस से मजा नहीं लेगा। जैसे मान लीजिए कोई देवता हो और कोई कहे कि वो इस पृथ्वी पर आ करके और सुअर जैसा गड्ढा में लोट करके और कहे कि मजा आ गया, अरे उसको क्या है मजा? आत्मा इस दृश्य प्राकृत वस्तु खा करके, छू करके, देख करके उसको मजा नहीं आएगा। उसका मजा है महामंत्र, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। आत्मा आध्यात्मिक है, इसलिए आध्यात्मिक वस्तु से ही उस सुख का अनुभव करेगा। लेकिन बीच में जो ऐसा जैसे लग रहा है कि ये चीज मिला तो सुख का अनुभव करने लगा। जैसे मान लीजिए कोई थका हो, धूप में से आया हो और एसी चालू किया जाए, हवा शरीर में लगती है तो इसके बाद आदमी कहा था आहा फ्रेश हो गया, रिलैक्स्ड हो गया। आत्मा इस तरह से कभी रिलैक्स नहीं होता, वो ऑलरेडी रिलैक्स्ड है, आनंदमय है, वो स्वयं आनंद से बना हुआ है। ये आनंद घन परमात्मा का, भगवान का अंश है, इसलिए स्वयं ही आनंदमय है। बाहरी आनंद उसमें डाला नहीं जा सकता है, और वो भी प्राकृत, वो भी जड़ पदार्थ, वो आनंद नहीं है आत्मा का। आत्मा का आनंद स्प्रिट है। तो भगवान की जो भक्ति है, उनका नाम रूप गुण लीला ये सब चीज शक्ति है, ये सब बेहलादनी शक्ति है। इसीलिए आत्मा का वास्तविक सुख है भगवान की भक्ति। तो आत्मा में रति नहीं है राजा जी, ये देह और मन में है, और मन में क्रोध, मन में क्रोध। जैसे आप तमतमा गए हैं, आप क्रोध में हो गए हैं, तो वास्तव में आप क्रोधित नहीं हुए हैं, आपका मन क्रोधित हो गया है। तो क्रोध भी आत्मा नहीं कर सकता है। क्यों? अच्छा, क्रोध क्यों होता है? क्रोध इसलिए होता है कि हमको ये वस्तु नहीं मिली, हमारी इच्छा से नहीं हुआ। तो प्राकृत एडजस्टमेंट की इच्छा आत्मा को हो ही नहीं सकती है, इसलिए उसमें क्रोध आ नहीं सकता। आत्मा कभी क्रोध नहीं करता है, न आत्मा में कभी काम विकार आ सकता है, न कभी लोभ आ सकता है, न निद्रा रति सब। और अहम मदह और सांसारिक पोजीशन के चलते, सांसारिक धन के चलते, रूप के चलते, विद्या के चलते आत्मा में कभी मद नहीं हो सकता है। अहम मदह का अर्थ है कि शरीर में मैं बुद्धि करके एक मद होता है, गर्व होता है, तो आत्मा को नहीं हो सकता है। आत्मा कभी ऐसा अनुभव नहीं करेगा कि हाँ मैं बड़ा पोजीशन वाला हो गया। दिव्य आत्मा इन प्राकृत वस्तुओं को लेकर के कैसे अहंकार कर सकता है, कैसे गर्व कर सकता है? जैसे मान लीजिए कोई राजा हो, भारतवर्ष का राजा बन जाए और राजा क्या कभी कूड़ा करकट के पास, गार्बेज के पास आकर के कहेगा कि पूरा मेरा अधिकार हो गया है, पूरा गार्बेज पर मेरा अधिकार हो गया, ऐसे गर्व उसे कभी नहीं होगा क्योंकि वो बहुत ऊंचा व्यक्ति है, सारा भारत उसके अधीन है। इस तरह आत्मा इतना सुपीरियर है इस माया जगत से, उस माइक वस्तुओं के कारण कभी गर्व नहीं हो सकता। तो गर्व होना, सुख का अनुभव होना, क्रोध होना, भय, प्यास, भूख और श्रम, थकावट, स्थूलता या कृशता, हे राजन, ये सब देह के होते हैं, मन के होते हैं, आत्मा के नहीं। देहे न जात सही में संतर सूचक, सूचक का अर्थ शोक। हम लोग इस संसार में कुछ न कुछ शोक करते रहते हैं, ये स्वभाव हो गया है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। यदि दो चार बच्चे हो गए तो हम लोग सोचते रहते हैं कि इसका आगे क्या होगा, बिना मतलब के सोचते रहते, शोक करते रहते, कुछ न कुछ शोक करना, उसने हमको ऐसा कह दिया, वहां गया तो ये चीज नहीं मिला, कुछ न कुछ मन अभाव की सृष्टि करके सोचता रहता। लेकिन आत्मा का क्या बिगड़ सकता है इन वस्तुओं के न मिलने पर, और आत्मा इसलिए आत्मा में शोक नहीं है, वो आनंदमय है। देहे न जाता सही में शांति, जो देह में उत्पन्न हुआ है, देह को मैं मानता है, उसी में ये सब होते हैं, हम में नहीं। न मैं शांति, हम में ये सब नहीं है, न मुझे भूख है, न मुझे प्यास है, न मुझे शोक है, न लोभ है, न काम है, न क्रोध है, न मुझ में मोटापन है, न कृशता है, न मुझ में आदि है, न व्याधि है, कुछ नहीं। जो देह को मैं मान चुका है उसमें ये सब होते हैं, देह के धर्मों को, मन के धर्मों को अपने में आरोपित करता है। लेकिन हे राजन, ये सब मुझ में नहीं, मैं देह में नहीं, मैं देह से बिल्कुल भिन्न। अच्छा, राजा रघुवर ने एक बात कही थी कि क्या तुम जीते जी मर गए हो, क्या सांस लेते हुए मर गए हो, मेरी बात नहीं समझ रहे हो? तो उसका उत्तर देते हैं, जीवन मृतत्व नियमेन राजन आद्यंतवत जब विकृत सुदृष्टम। हे राजन, हे महाराज जी, आपका अभिमान नहीं जा रहा है कि मैं राजा हूं, इसलिए लीजिए मैं भी आपको राजा कह देता हूं। हे राजन, जो जीवन मृतत्व है, जीवित अवस्था में ही मरा हुआ, ये सब जगह लागू है, ये नियम से ही है, केवल मुझमें ही ऐसी बात है क्या नहीं है, सबके साथ लगा हुआ है कि जीवित अवस्था में ही सभी मरे हुए। यह दृष्टम अप्रत्यक्ष विषय है, जीवन मृतत्व नियमेन राजन, क्योंकि जितने भी विकृत होने वाले पदार्थ हैं, परिवर्तनशील क्षणभंगुर पदार्थ हैं संसार में, देखा जाता है आद्यंतवत, वो आदि और अंत वाले हैं, एक दिन का प्रारंभ होता है और एक दिन समाप्त हो जाते हैं। और इस अवस्था में भी शरीर जीवित माना जाता है, लेकिन वास्तव में पहले से ही मरा हुआ है, जीवित कोई और वस्तु है जो इसमें चेतना दे रही है, इसकी अपनी चेतना नहीं है। तो सबके लिए कहा जा सकता है कि प्रत्येक आदमी जीवित ही मरा हुआ है, केवल मेरे साथ लागू नहीं, आप स्वयं ही जीवित अवस्था में मरे हुए, शरीर मरा हुआ, एक दिन शरीर था नहीं, मां के गर्भ में मिला और श्मशान में समाप्त हो जाए। तो इस संसार में प्रत्येक वस्तु चल रही है, चल रही है, लेकिन जन्म ली है और एक दिन उसको समाप्त होना है, ये तो सबके साथ लगा हुआ है, सभी जीवित अवस्था में मरे हुए। और आपने एक बात कही, उसने कहा था राजा रघुवर ने कि मैं तुम्हारा स्वामी हूं और तुम स्वामी की अवहेलना कर रहे हो, तुम पहचानते नहीं हो कि मैं तुम्हारा मालिक हूं, तुम मेरे दास हो। तो इस पर कहते हैं, स्वस्वाम्य भाव ध्रुवी दिजत्र तभी चेतस विधिकृत योग। हे इद्य, इद्य का अर्थ है हे स्तुति के लायक, यहां पर अर्थ है कि हे प्रशंसा सुनने के इच्छुक, आपकी इच्छा हो रही है कि हमारी कोई प्रशंसा करे तो मैं भी कह रहा हूँ आप दिव्य हैं, अथवा इस समय राजा के पद पर आप आसीन हैं, इसलिए भाई प्रशंसा के पात्र है, उस समय आप राजपद पर हैं। तो हे राजा, जत्र स्वस्वाम्य भाव ध्रुव, जहां पर स्वामी और दास का पोजीशन नित्य हो, कभी बदलने वाला न हो, अनादि काल से हो और आगे भी अनंत काल तक रहे, वहीं पर विधिकृत युग लागू होता है। विधिकृत युग का अर्थ है कि एक व्यक्ति आर्डर देता है और दूसरा व्यक्ति इसको पालन करता है। विधि और कृत इसको कहते हैं। एक कानून बनाएगा, कोई रास्ता बनाएगा, संविधान बनाएगा और दूसरा उस पर चलेगा, तो चलने को कृत्य कहते हैं, वो करेगा, करना चाहिए, और विधि मतलब कानून। लेकिन सदा यह व्यवहार वही चलेगा जहां स्वामी और सेवक का संबंध नित्य हो। लेकिन इस संसार में देखा जाता है कि स्वामी और सेवक का स्वस्वामी भाव अध्रुव है, अनित्य है। यदि मान लीजिए आपका राज्य भ्रष्ट हो जाता है, आप राज्य से च्युत हो जाते हैं, और मैं यदि राजा हो जाऊंगा तो ये सारी स्थिति विपरीत हो जाएगी, और तब मैं कहूंगा कि क्यों निगम अरे कैसे चल रहे हैं। तो मैं अगर पालकी में चढ़ जाऊं, मान लीजिए मैं राजा हो जाऊं और आप यदि दास हो जाते हैं, तब तो कानून ठीक उल्टा हो जाएगा, तब मैं ऑर्डर दूंगा आपको, होगा नहीं, तो होता रहता है ना। इस संसार में कौन किसका मालिक है, कौन किसका सेवक है। स्वस्वामी भाव, स्व का अर्थ है नौकर दास, और स्वामी मतलब स्वामीपना का भाव, यह इस संसार में अनित्य है। देखा जाता है कि आज जो व्यक्ति नौकर है कल राजा हो जाता है, और जो राजा था वो उसकी दासता करता है। हम लोग पढ़ते हैं चैतन्य चरितामृत में कि ये सुबुद्धि राय बंगाल के राजा थे, और एक बार उनके यहां नवाब हुसैन साहब जब बच्चा था तो पढ़ रहा था, और पढ़ते समय उसको उन्होंने मार दिया था घोड़े के चाबुक से, तो उसकी पीठ पर दाग उखड़ गए। और वही हुसैन शाह जब बंगाल का नवाब बना, राजा बना, तो उसकी स्त्री बेगम वो देखी उसकी पीठ पर दाग, और पूछी कि वो दाग कहां से उखड़ा है आपकी पीठ पर, तो उसने कहा कि सुबुद्धि राय हमारे गुरु के समान है, वे पढ़ाते समय हमको मारे थे। तो उसकी पत्नी बेगम वो मान कर गई, रुठ गई, कहे कि उसको प्राण दंड दीजिए जो उसको आपको बचपन में मारा, उसको प्राण दंड दीजिए, नहीं तो मैं जीऊंगी नहीं। तो लगा कहने कि अरे वो पवित्र ब्राह्मण है, ऐसा मत करो, हमारे गुरु हैं। तो फिर भी वो नहीं मानी, कहे कि मैं प्राणांत करूंगी, हत्या करूंगी अपनी यदि आप उसको नहीं मारते। वो मनाने लगा नवाब हुसैन साहब ने ऐसा मत करो, तब उसने कहा कि कम से कम उसकी जात ले लो, मुझे मुसलमान बना दो। तब इतना पर राजी हो गया, तो अपने हुक्का का जूठा पानी उनको जबरदस्ती पिला दिया और मान लिए कि मैं मुसलमान हो गया। ऐसे हिंदू लोग बेवकूफ होते, तो जूठा पानी पिलाने से कोई मुसलमान हो जाएगा, ये सोचने की जरूरत है। तो और गए जब मुक्ति मंडल के पंडितों से पूछे, जब नेपुरे में तो वे लोग बताया कि आपको उबलता हुआ घी पी करके मर जाना चाहिए, अब दूसरे जन्म में अब ब्राह्मण होंगे, हिंदू होंगे, अब आप इस शरीर से नहीं हो सकते। इतना जन्म त्याग देना आसान नहीं था, तो बनारस गए, बनारस में जो पंडित बहुत प्रसिद्ध है, तो वे लोग कहे कि आप तो सावन में धीरे धीरे जमकर मर जाइए, तब शुद्ध होंगे, एक से एक कठिन। लेकिन वहीं पर किसी पंडित ने कह दिया कि आप नजदीक चले जाइए, इस समय विश्व के सबसे बड़े पंडित हनुमान पंडित रहते हैं, वो जो कुछ कहेंगे वो प्रमाण होगा। तो सुबुद्धि राय गए वहां, लेकिन उनसे भेंट नहीं हुई चैतन्य महाप्रभु से, तो फिर बनारस में भेंट। बनारस में सुबुद्धिरा ने पूछा चैतन्य महाप्रभु से कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे क्या करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपकी जात कहीं नहीं गई है, आप ठीक है, आप हिंदू हैं, और यदि आप मानते हैं कि कुछ पाप हो गया है तो केवल महामंत्र जपिए और कुछ करने की जरूरत है। और वृंदावन में जाइए, वहां पर वैष्णवों को कुछ चावल खरीद करके खिलाइएगा। हमारे बंगाली वैष्णव चावल खाते हैं, उनको सरसों का तेल लगाने के लिए और चावल खाने के लिए कुछ दीजिएगा। वो गाय को सूखी लकड़ियां बेच बेच कर मथुरा जीवे और बंगाली वैष्णवों को भेज देते। देखिए एक दिन जिस पर हंटर लगा था, चाबुक लगा था, वो एक दिन बंगाल का निवार हो गया, बदशाह हो गया। तो सब कुछ उल्टा हो सकता है। बहुत निकट का उदाहरण देने पर और क्लियर हो जाएगा। बहुत पहले जो महाराज कहे जाते थे तो उनको बहुत कृपा करके कुछ लोग प्रभु कहकर के संतोष कर लेते हैं। वही व्यक्ति यदि आता है तो उसको मेरा वाला हुआ भक्त हुक्म देता है, वहां बैठो, ये करो, ये करो। बड़ा बड़ा व्यक्ति भी इस तरह से क्षण भर में देखा जाता है। संकेत काफी है, सभी समझ सकते हैं। इस संसार में स्वामी और सेवक की जो स्थिति है टेम्पररी है, स्वभंग है। इसलिए कानून कायदा संविधान भी टेम्पररी है। आप क्यों ऐसा मानते हैं कि मैं राजा हूं और मेरा सेवक? कब से आप हमारे राजा हैं? कितना दिन से आप राजा हैं? मां के गर्भ में जब व्यक्ति जन्म लेता है उसमें क्या राजा रहता है? और कुछ ही दिन के बाद वरघट पर जाएगा या बुढ़ापा आएगा, तब राजापना कहां रहेगा? तो शरीर को जो मैं मानते हैं वो इस तरह से आंदोलित होते रहते हैं, उनका मन आंदोलित होता है। आज राजा मानते हैं, कल अपने को कंगाल मानेंगे, कल ये मानेंगे, गोरा मानेंगे, काला मानेंगे, ये वो ऐसे ऐसे चलता रहा। शरीर को मैं मान, इस संसार में एक ही व्यक्ति है जो स्वामी है, बाकी सब दास। इनके कहने का आशय, जहां पर स्वामी और सेवक का भाव नित्य रहे वहीं पर ये ऑबीडियंस मैंने आज्ञा मानना और आज्ञा देना नित्य रहेगा। तो वास्तविक स्वामी भगवान श्रीहरि हैं, कृष्ण हैं, और बाकी सब सेवक हैं। इसलिए सब अवस्था में, सब काल में, सभी देश में एकमात्र उनकी आज्ञा का पालन करना है, बस वही स्वामी है। और कोई आज्ञा दे नहीं सकता है, क्योंकि आज आज्ञा दे रहा है कल हो सकता है उसी आज्ञा का पालन करने वाला वही हो जाए, आज्ञा देने वाला दूसरा हो जाएगा, है ना? ये तो देश के शासन में या मठ मंदिर में भी अध्यक्ष बदलते रहते, टेम्पररी। कुछ तो राजा ऐसे होते हैं जीवन भर शासन करते हैं राजतंत्र, लेकिन आज के युग में तो 5 वर्ष निभा दे तो वो कहते 5 साल सरकार ले गए ठेल ठाल करके, 5 साल चला दिया, 5 साल चला दिया तो बहुत प्रशंसा होती है। और 5 साल के बाद वो कहते हैं इसको जेल में भेजो, जेल में भेजो, जेल में भेजो, जेल में करो, जेल में करो, पता नहीं कब जेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो ये स्वामी और सेवक का भाव क्या रहा? कौन यहां प्राइम मिनिस्टर है, कौन राष्ट्रपति है और क्या है? तो कुछ दिन पहले अंग्रेज जो लोग इस देश को अपना मानते थे कि हमारा राज्य, लेकिन उनको यहां से भगा दिया गया, महात्मा गांधी ने भगा दिया। एक दिन मानते थे कि ये हमारा देश, हमारा देश, और कोई भी नियम लागू करते थे तो सुपरफिशियली वो ये दिखाते थे, कहते थे कि भारत बहुत गरीब देश है और हम इसको धनी बनाना चाहते हैं, ये बहुत अशिक्षित देश है, हम शिक्षा का प्रचार करना चाहते हैं, और असभ्य देश है, हम इसको सभ्य बनाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि उन लोगों को कुछ भी आता नहीं है, इसलिए कुछ भी ना बनावे, सब कुछ इंग्लैंड से आएगा, फर्स्ट क्लास की चीज आएगी, ठीक से आएगी।
और भीतरी आशय था कि हम कुछ भी न बनाए गरीब हो जाए जिससे सदा के लिए हम इनको अपने अधीन रखें बस। लेकिन बाहर रूप से ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर बात कहते थे तो बहुत लोग उनके घपले में आ गए, बहुत काल तक वे करते रहे शासन, लेकिन बाद में भी चले गए, आज उनका कुछ भी नहीं है। ये स्वामी और सेवक का भाव अनित्य है, तो उनके द्वारा बनाया हुआ नियम भी अनित्य हो गए, वो भी कृत जो उसी समय के जाते हुए भी चला गया, नया संविधान बना, दूसरा संविधान बन गया। और यहां का व्यक्ति राजा होता है तो भी टेम्पररी राजा होता है। अभी हम एक व्यक्ति तो केवल 15-20 दिन के लिए राजा हुए थे ना, मैं उस समय जा रहा था विदेश तो वो लोग पेड़ में दिखा रहे तो 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए वो पता नहीं कितने दिन क्षण भंग हो। इस तरह अपने को कभी नहीं मानना चाहिए शरीर के अनुसार कि मैं यह हूं वह हूं ये हूं वो हूं, और इसकी मजाल मेरी आज्ञा नहीं मानेगा। अरे बाप रे बाप, अब कितना दिन आज्ञा देने वाले रहेंगे। इस तरह से आदमी जलता रहता है इस अध्ययन तो स्वस्वामी भावे ध्रुवी जब तक तभी चेतेश्वर विधिकृत जोगा। स्वामी और सेवक का भाव जहां ध्रुव है नित्य है वहीं पर आज्ञा देना और आज्ञा पालन करना चलता है। अब जहां स्वामी सेवक भाव टेम्पररी है वहां क्या कोई आज्ञा देगा और क्या कोई आज्ञा पालन करेगा। आज आज्ञा दे रहे हो कि ठीक से पाल पाल की ढो और अभी 2 मिनट में मेरे चरण में गिरोगे। भीतरी आशय अभी था स्वामी ठीक से पाल की धोए क्या हो गया। एक बार उस मंदिर में देखा था 1989 में मैं यहां आया था 81 साल पहले, तो देवकी नंदन इस मंदिर में मेरे साथ आए थे। सहज श्रद्धा होने से वो आरती उठा करके सबसे पहले मेरे पास लाए। मंगला आरती चल रही थी और दो दिनों में आरती उठाए और मेरे पास सीधे लाए। महाबुद्धिदास नाम का लड़का भक्त था प्रभुपाद जी का, शेष वो टेम्पल कमांडर था, उसमें वाइस प्रेसिडेंट है टेम्पल कमांडर। तो आरती दिखाने के बाद देवकी नंदन का कान पकड़ा और कहा ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, या और भी सन्यासी हैं और आई ऐसा ऐसा क्यों किया। अब तो वो बेचारा बड़ा दुखी हुआ, फिर मेरे पास आकर कहने लगा ऐसा ऐसा किया, ये किया वो किया। तो मैं उसको समझाया कि ये बच्चा है नहीं जानता है, ये एटिकेट कहते हैं ना, नियम कानून नहीं जानता। अभी तो 2-4 दिन आए हुए हुआ, लेकिन मैं देखा कि थोड़े से हेर फेर से इतना रिएक्शन क्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए आरती भूल से कोई लड़का किसी इन्फेरियर भक्त को दिखा दिया तो क्या वो झूठा हो जाएगा। कोई बहुत गड़बड़ी नहीं है, लेकिन आदमी इतना इन सब कृत्यों में बंध जाता है कि अगर क्रम से आरती हमारे पास नहीं आए तो वो सोचने लगते, केवल आरती आंदोलित कर देते हैं हृदय को। इसमें क्रम का निर्वाह क्यों नहीं हुआ, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। लेकिन आदमी का चित इस तरह से छोटी छोटी बात के लिए सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। इतना ज्यादा जब चित्त प्रभावित हो गए छोटे से दृश्य से तो आदमी क्या कृष्ण मन स्थिर रख पाएगा। वो तो ऐसे भी देखते हैं कभी कभी गुरु ये बड़े लोग आते हैं और सब लोग आरती ले चुकते हैं, वो बाद में आते हैं तो आरती लेते है ना। उसमें तो ये विचार नहीं करते हैं, ये तो झूठा होते। मैं ये नहीं कहता हूं कि क्रम या शिष्टाचार का पालन नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन कभी अगर व्यतिरेक हो गया तो उसका भी कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे चल रहा है
लेकिन वो मन उद्वेलित क्यों होता है? पहले से ही मन में मान रही है कि मैं बड़ा हूं, मेरे पास आना ही चाहिए। ग्रहण में कथा है कि एक बार प्रणाम करने में गलती हो गई भगवान राम से, किसको पहले करना चाहिए किसको नहीं, इसी पर दुर्वासा जी क्रोधित हो गए थे। जब ध्यान ऐसी घटना घटी, बाद में उनको समझाया उन्होंने भले गुरु वशिष्ठ को करें कि दुर्वासा जी को करें तो भगवान राम नियम से गुरु महाराज को पहले किए, वशिष्ठ जी को सौरण को दुर्वासा, बाद में उनको समझाया। तो इस तरह से यह अहंकार, यह अहंमति तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य देह को या मन को मैं मान लेता है, अन्यथा ये सब संसार के व्यवहार चलेंगे और मन प्रभावित नहीं होगा। उसको तो भगवान कृष्ण के चेहरे पर देखने से फुर्सत नहीं होगी कि कब क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, जा रहा है। मेरे कहने का आशय है कि जब इतनी छोटी छोटी बातों पर मन प्रभावित होगा तो थोड़ी बड़ी बात हो जाएगी तो क्या होगा, जो आगे हमको भोजन देना है कोई नहीं दिया, आगे पीछे दे दिया तो मान लीजिए मैं क्रोधित हो जाए, और किसी दिन नहीं देगा तो हम हमारा तो हार्ट अटैक कर जाएगा बताओ नहीं दिया तो। बहुत सूक्ष्म बातें हैं, विचार करके चलना है इस संसार में। जब भरत जी को, जब भरत जी शिक्षा दे रहे राजा रघुवर को किया, थोड़े दिन के लिए राजा हो गए तो सोचते हो राजा हो, राजा हो, राजा तुम नहीं हो, आज राजा हो कल नहीं रहोगे, आत्मा कंगाल के देह में जाएगा, वृक्ष के देह में जाएगा, कई जगह जाता रहता है। और विशेष बुद्धि विवरम मनाच पश्चिम जन्म व्यवहार करने, और जो विशेष बुद्धि है, विशेष मतलब राजा और भृत्य का जो व्यवहार है उसको विशेष कहते, निर्विशेष का मतलब ये सब व्यवहार नहीं, और विशेष का मतलब कि मैं राजा हूं तुम मन को, ये जो व्यवहार है, ये जो विचार है, बुद्धि है, इसको मैं व्यवहार के अलावा कोई भी स्थान नहीं देख रहा हूं, केवल व्यवहार के लिए है, सत्य नहीं है। व्यवहारतः अन्यत मना विवरम न पश्यामि, विवरम माने जगह, थोड़ी भी जगह मैं नहीं देखता हूं सेवक और स्वामी के व्यवहार के विचार के लिए, बुद्धि के लिए, केवल व्यवहार में माना जाता है। इसे मान लीजिए आप ड्रामा कर रहे हैं तो ड्रामा में कोई राजा बन गया है और कोई नौकर बन गया है, कोई पिता बना है कोई पुत्र बना है, तो स्टेज के अलावा उसका कोई महत्व नहीं है, न उधर कोई संबंध रहता है। ऐसा नहीं कह सकते, मान लीजिए ड्रामा में आपका कोई बेटा बना हुआ है तो स्टेज से निपथ्य में जाते ही कहीं अब तो तुम मेरा बेटा हो गया, अब तो तुमको बेटा रहना पड़ेगा, मैं तुम्हारा बाप। तो व्यवहार था केवल स्टेज पर, और व्यवहार सत्य नहीं है, पर्दा के पीछे परमार्थ कुछ और है। और हो सकता है कि वो आपस में भाई भाई लगते होंगे, या जो नौकर बना होगा वही नेपथ्य में मालिक होगा, कुछ भी ठीक नहीं रहता है। तो ये व्यवहार के अलावा विशेष का कोई स्थान नहीं है। कोई ईश्वर, कोई स्वरस्तत्र किमी से तव्यम, कौन यहां स्वामी है, कौन ईश्वर है, और किस पर शासन किया जाए, कौन वस्तु उसके अधिकार में है, बताइए, पूछ रहे हैं कौन यहां ईश्वर है। ईश्वर हम तब मानेंगे जब सदा से ईश्वर हो और सबका ईश्वर हो, है ना, जो सबका मालिक हो और सब समय हो, तब उसको ईश्वर कहा जाएगा। तो कोई एक कारखाना का मालिक है और गली में निकलते हैं उसको कोई नहीं जानता है, कोई एक मंदिर का मालिक है और बाहर रोड पर कोई जानता भी नहीं है कि कौन आदमी है, और आज मालिक है कल नहीं रहेगा, तो ये तो मालिकपना हुआ नहीं। ईश्वर वो है जिसकी ईश्वरताई किसी भी देश में और किसी भी काल में बाधित न हो, एकमात्र कृष्ण मालिक है, एकला ईश्वर कृष्ण, आर सब धृत जारे जैसे ना चाहे ऐसे तैसे करेंगे, स्वामी वो है जो सदा स्वामी हो सभी काल में, वो सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, कलयुग में भी, और वह 1901 में भी था, 2 में भी था, 92 में भी था, 3 में भी रहेगा, 4 में भी रहेगा, आगे आने वाली शताब्दियों में भी वो मालिक बना रहेगा, तब कहेंगे हाँ ये मालिक। दो दिन के लिए मालिक होता है तो टेम्पररी है, आज मालिक नहीं रहेगा कल नौकर हो जाएगा। तो कौन है ईश्वर है और कौन सी वस्तु उसके अधिकार में है, मरेगा तो लेकर के जाएगा या जीवित ही क्या वो कंट्रोल कर रहा है। ईश्वर कहते हैं कंट्रोलर को, क्या कंट्रोल कर रहा है। लेकिन तथा तो राजन कर्मां किमते, फिर भी यदि आपकी यही भावना है कि आप राजा हैं और मैं आपका दास हूं तो ठीक है, कहिए हम आपकी क्या सेवा करें। सबके बाद अगर आपकी यही भावना है कि आप राजा हैं तो हुकुम हो, हुकुम दीजिए। अब क्या किया जाएगा भाई, आपको प्रसन्न करना जरूरी है। मैं तो ये कहता हूं कि कोई राजा नहीं है, कोई सेवक नहीं है, लेकिन इस पर भी आपका यदि अध्ययन बना ही हुआ है कि आप राजा हैं तो बताइए करवा मुकिन हम आपकी क्या सेवा करें। आप तो राजा तो बिल्कुल